नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। द्वापर युग खत्म हो गया था, कलयुग प्रारंभ हो ही गया था और एक 88,000 बहुत प्रचंड मात्रा में 88,000 ऋषि एकत्रित हो रहे थे और एक कार्य कर रहे थे, एक बड़ा यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ करते करते उनकी सबकी हा हा हो हू करते करते उनकी सबकी हालत खराब हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही थी यज्ञ करना इतने सालों तक, और सारे मंत्र बोलना, एक मंत्र गलती हो गया तो सारा यज्ञ सूत्र से दोबारा शुरू करना पड़ता था। तो ऐसे यज्ञ करते करते काफी समय बीत गया और वहां पर अचानक से सुत गोस्वामी वहां पर आ जाते हैं और सुत गोस्वामी के वहां पर आते ही जो सारे 88,000 ऋषि है सब उठकर खड़े हो जाते हैं और सुत गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। सुत गोस्वामी को देखते ही 88,000 ऋषि जो इतना बड़े यज्ञ कर रहे थे उसको बुझा देते हैं, कहते कि अभी ये सब यज्ञ विज्ञ करने का कोई आवश्यकता नहीं है, अभी सुत गोस्वामी जैसे महाभागवत आ गए हैं तो इनके श्रीमुख से हम लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा हरे।
हो गया सर,
धन्यवाद।
तो इस तरह से जब सुत गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए तो सभी वैष्णव सभी वहां पर उपस्थित ऋषियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और अपना सारा यज्ञ यज्ञ इत्यादि छोड़कर उनके चरणों में बैठ गए और उन सब ने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया प्रश्न पूछने के लिए। अब विचार कीजिए कि 88,000 लोग बैठे हुए हैं और वे सब लोग यदि प्रश्न पूछे तो विचार के लिए कितना समय बीत जाएगा, या सुत गोस्वामी का जवाब देना पड़े तो कैसे जवाब देंगे 88,000 ऋषियों का। इसलिए उन सब ने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जिनका नाम था शौनक जी। तो शौनक जी उन सब के तरफ से प्रश्न पूछते थे किनको, सुत गोस्वामी। तो प्रश्न के क्रम में उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये श्रीमद् भागवत कैसे प्रकट हुआ और वेदव्यास जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कैसे प्रकट हुआ ये हम जानना चाहते हैं, तो कृपया करके हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो उसके साथ तो महाराज परिस्थिति कथा है, सब कथा है, लेकिन मुख्य रूप से बताइए कि वेदव्यास जी के माध्यम से कैसे प्रकट, क्या कारण था जिस कारण से ये दिव्य वेदव्यास जी इतने महान आचार्य थे जिन्होंने इतने सारे वैदिक ग्रंथों का रचना किया है और ऐसे वेदव्यास जी के माध्यम से कैसे प्रकट हुआ और इनको उपदेश किसने दिया प्रकट करने के लिए, तो ये प्रश्न पूछा। तो सुत गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरात योगी वासव्याम कलया हरे, कि इस वर्तमान चतुर्युग मतलब इसी घटना है, इसी चतुर्युग की घटना है, ये जो पूरी कथा जो सुनाने जा रहे हैं इस चतुर्युग की घटना है। भागवत में कई सारे पिछले कल्प की पिछले चतुर्युग की घटनाएं होती है लेकिन ये जो घटना है वो इसी है, इसी द्वापर युग की है। तो बताते हैं कि द्वापर के समय पराशर ऋषि और सत्यवती कौन थी, ये एक मछुआरी की बेटी थी, इन दोनों के समागम से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। जी हाँ, ये वेदव्यास जी के जन्म का यही कथन है। तो सत्य द्वापर त्रेता और कली ये चार युग होते हैं लेकिन इस युग में इस चतुर्युगी में थोड़ा अतिव्यापन हो गया था, अर्थात पहले सत्य आया फिर त्रेता युग आया फिर द्वापर आया फिर कली आया। हमेशा क्या होता है, सत्य के बाद फिर द्वापर आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद कलयुग आता है, लेकिन इस बार कुछ विशेष हो गया। विशेष क्यों हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होने वाला था, इस कारण से ये विशेष योजना बनाई गई थी। और उस कारण से जो त्रेता युग जो पहले आने, जो द्वापर के बाद आता है, वो पहले आ गया। वेदव्यास जी एक बार सरस्वती की नदी, सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचार कर रहे थे। वेदव्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के कला अवतार थे। भगवान ने शास्त्रों की रचना करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया है। हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए शास्त्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कि शास्त्रों के माध्यम से हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। तो जो शास्त्र लिखेगा वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें कोई किसी प्रकार का बद्धता ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई माया का प्रभाव ना हो। एक साधारण जीव ये कार्य नहीं कर सकता, इसलिए भगवान स्वयं ये कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं वेदव्यास जी के माध्यम से। तो वेद जितने भी शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है ये सब वेदव्यास जी द्वारा लिखित है। अभी कैसे 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 विविध शास्त्र लिखकर अंत में उन्होंने भागवत कैसे लिखा, ये हम लोग आज के चर्चा का विषय होगा। तो एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठकर विचार करने लगे। अभी साधु लोग जो होते हैं, जो साधु को होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वे तो उनके हृदय में भगवान बंधी रहते हैं, 2400 घंटे में भगवान का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन उन्हें एक चिंता होती रहती है। किसकी चिंता? हमारे जैसे बद्ध जीवों की चिंता, कि ये जो हम लोग जो जीव है, जो इस संसार में लिप्त है और भगवान को भूल चुके हैं, वे लोग कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे, इसके बारे में साधु हमेशा चिंता करते रहते हैं। तो वेदव्यास जी भी उसी चिंता में थे। वेदव्यास जी भूत और भविष्य दोनों जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। वे जान रहे थे कि आने वाला जो युग है इसमें लोगों की आयु कम होने वाली है, लोगों की क्षमता कम होने वाली है, लोगों क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनका उनका जो कर्तव्य है उसका वो लोग ठीक से निर्णय नहीं कर पाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए। तो वेदव्यास जी को चिंता हो रही थी भविष्य में आने वाले जो लोग हैं उनका कैसे होगा, उन लोग भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे, पूरा का पूरा युग दूषित होगा, सब जगह बिना मतलब का कलह होगा, पति पत्नी में कलह होगा, भाई भाई में कलह होगा, बाप और बेटे में कलह होगा, सब जगह कलह का दृश्य होगा, छोटी छोटी बात पर झगड़े हो जाएंगे, सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, मांस मछली मटन खाने में तृप्त रहेंगे, सब लोगों को मंदिर विंदिर सब छोड़ के लोग पॉक्स में घुमा करेंगे। तो ये दशा वेदव्यास जी अपनी दृष्टि से देख रहे थे कि क्या दशा होने वाली है बद्ध जीवों की आगे जाके। लोगों के पास न्यूज़पेपर के अलावा कोई न्यूज़पेपर ही उनका वैदिक ग्रंथ होगा, इतने सारे टीवी न्यूज चैनल नहीं है, सुबह से लेकर रात तक ये हुआ, इसने ये बोला, उसने ये बोला, इसी में इतने लुप्त रह जाएंगे कि भगवान का भजन करना ये भूल ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वेदव्यास जी को दया आती है और वेदव्यास जी कहते हैं, विचार कर कहते कि चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम भिक्षा वैदिकम। उन्होंने सोचा कि वे वैदिक वेदों में जो मन को शुद्धि करने के लिए जो कुछ उपाय है मैं पहले उसकी रचना कर देता हूँ, उसको लिख देता हूँ। इसलिए वेदमेकम चतुर्विधम, उन्होंने इस विचार करते हुए कि मैं वैदिक ग्रंथों को लिख दूंगा जिससे लोग पढ़ेंगे और क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करके वे लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इस उद्देश्य से। या जो लोग भगवान को प्राप्त भले नहीं कर, लेकिन जो लोग नास्तिक है वे लोग कम से कम आस्तिक बन जाए और जो आस्तिक है वो थोड़ा पुण्य कर्म करने लगे, इस दृष्टि से वेदव्यास जी ने क्या सोचा कि मैं एक वेद को चार भागों में विभाजित कर देता हूँ। पहले सिर्फ यजुर्वेद था और ये जो चार वेद है रुद्र यजुर् साम और अथर्व, इन चारों वेदों में जो लिखा हुआ है वो सारा एक ही वेद में था, कौन से? यजुर्वेद में। लेकिन वेदव्यास ने विचार किया कि अरे ये मूर्खों को न्यूज़पेपर से फुर्सत नहीं मिलने वाली है, वेद क्या खाप पड़ेंगे, कहां वेद लेके घूमेंगे। तो इन्होंने विचार किया कि इसको विभाजित कर देता ताकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग मानसिकता वाले लोग इसको समझ सके। तो वेदव्यास ने इसको चार विभागों में कर दिया और पांचवा वेद है वो पुराण और महाभारत के रूप में रच दिया। चांदोग्य उपनिषद में पुराण और महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है, कोई कथा नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस ये गंभीर विषय है थोड़ा सा, अक्सर रात में थोड़ी कुछ कथाएं होंगी तो मन ये हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सिद्धांत सुनने में थोड़ा आलस नहीं करना चाहिए, इससे कृष्ण में मन लग जाता है, मति लग जाती है, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो कृष्ण में चित्त लगने में सहजता से चित्त लग जाता है, कृष्ण को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, क्यों इतने सारे शास्त्र लिखे गए हैं, ये सब हमें समझना चाहिए। जब तक इसको हमें नहीं समझेंगे तब तक कृष्ण में हमारा चित्त नहीं लगेगा अच्छे से। वेदव्यास जी ने इन चार वेदों को रचा और इन्होंने इन चार वेदों का जो उत्तरदायित्व है, प्रचार करने का जो उत्तरदायित्व है, इन्होंने अपने चार शिष्यों को दिया। उनमें से जो ऋग्वेद है उसको उन्होंने पहल ऋषि को दे दिया, जो सामवेद है उसको गान के जो विद्वान है जैमिनी ऋषि उनको सौंप दिया, यजुर्वेद को वैशंपायन जी को दे दिया और अथर्ववेद है वो उन्होंने सुमंत मुनि को दे दिया और इतिहास और पुराणों को उन्होंने रोमहर्षण जी को दिया। इसके बाद वेदव्यास जी ने इन लोगों को कहा कि आप अपने शिष्य बनाइए और अपने शिष्यों से इनको बोले कि और इसका विस्तार कीजिए। तो इस तरह से ये जो वेद है उनका इस तरह से प्रचार होते गया। अभी वेदव्यास जी का उद्देश्य क्या था ये वेद लिखने के पीछे, कि जो कम बुद्धि वाले जो लोग हैं, जो कम बुद्धि वाले उन लोगों को भगवान के बारे में कुछ जानने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने वेद लिख दिया ताकि वेदों में कुछ पढ़कर भगवान के बारे में समझेंगे। लेकिन वेद जो है इतने आसान नहीं है, वेद पहले तो संस्कृत में है और उसमें भगवान की डायरेक्ट व्याख्या नहीं है कि भगवान कौन है कि ये तो बात सही है कि वेदों से भगवान को जाना जाता है, लेकिन वही लोग समझ सकते हैं जो शुद्ध सत्वों में होते हैं, जो लोग रजोगुण में होते हैं, जो लोग तमोगुण में होते हैं, वे लोग यदि वेद पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। जो सत्वगुणी लोग होते हैं वे ही लोग यदि शास्त्र पढ़ेंगे तो उनको समझ में आता है, लेकिन जो तमोगुण में है, जो मांस मच्छी मटन खाने में है और इंद्रिय केवल और केवल इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, उनके सामने अगर आप वेद खोल के बैठ जाएंगे तो उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों पर विचार करते हुए वेदव्यास जी ने सोचा कि ये लोग तो वेद नहीं पढ़ पाएंगे, इन लोगों को कथाएं चाहिए तो रुचिकर, क्योंकि सांसारिक लोगों को कथाएं चाहिए होती है, इसने क्या किया, अरे इस हीरो ने क्या किया, उस हीरो ने क्या किया, इस लड़के ने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया, लोगों की कथाओं में रुचि है। इसलिए वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना कर दी और उसमें वेदों का जो अर्थ है, वेदों का जो सार है, वेदों में जो वास्तविक जो चीज वेदों में लिखी गई उसको कथा के माध्यम से महाभारत के रूप में प्रेजेंट कर दिया। जो वेदों में है वही महाभारत में है लेकिन कथा के रूप में है, अलग अलग राजाओं के, अलग अलग ऋषियों के कथाओं, उनके जीवन के कथाओं के माध्यम से वेदव्यास जी ने महाभारत की प्रस्तुति कर दी और पुराणों की। अब विशेषकर किन लोगों के लिए स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र और जो पति द्विजाति लोग जो होते हैं उन लोगों को वेद श्रवण करने का अधिकार नहीं है। ये लोग वेद श्रवण लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन लोगों को अधिकार ही नहीं दिया गया है, क्योंकि यदि ये लोग सुन लेंगे तो अपनी मानसिकता के हिसाब से लोग कार्य करेंगे, वेदों में बताई गई बात होगी एक और ये लोग करेंगे कुछ और। अगर नियम पालन करना होगा तो नियम की बैंड बजा देंगे, इसलिए ये लोग उन लोगों के लिए अधिकारी नहीं दिया है। क्यों? कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह, इसलिए कि जो कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों में है कर्म है उनमें इन लोगों का पहले तो विश्वास नहीं है। अगर कुछ बोल भी दिया जाए करने को तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, उनकी श्रद्धा नहीं है। यही सोचकर उन्होंने महाभारत की रचना कर दी। अब देखिए महाभारत का जो उद्देश्य है, महाभारत में क्या है? भगवद गीता। भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक अंग है। भगवद गीता में कितने अध्याय है? कितने? अच्छा, ये जो भगवद गीता है ये महाभारत का एक पार्ट है। ये यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणों के कल्याण में लगे हुए थे, उनका यही उद्देश्य था इन सारे कार्यों के पीछे कि जो संसार में जो जीव है उनका उद्धार हो जाए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी न तुष्यत हृदयम तथा, अर्थात इनका हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा था। इतना सारा कार्य कर दिया लेकिन व्यास जी क्या थे? खिन्न थे, उदास थे। अब क्यों उदास थे? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बता दिया लेकिन भगवान की भक्ति कैसे करनी है उन्होंने नहीं बताया। तो इस तरह से उदास और खिन्न स्थिति में बैठे हुए थे। श्रील व्यासदेव अपने आप संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इतने गंभीरता से विचार करते करते उन्होंने सोचा क्या कर दिया मैंने इतना सारा ड्रामा कर दिया, इतने बड़े बड़े वेदों की रचना कर दी, सारे उसको अपने शिष्यों में बांट दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैंने भगवान के गुणों के बारे में कुछ नहीं किया है। भगवान की जो लीला कथा है उसका वर्णन ही मैंने नहीं किया है। अगर किया भी है तो कैसे किया है? थोड़ा सा, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसका वर्णन किया है, वैसे ही उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष और भगवान की लीलाओं को उन्होंने समरख दिया है। ये स्पेशल कैटेगरी में नहीं डाला है मेरे व्यास जी ने कि भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। देखिए कि संसार में अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, उनका सबका अलग अलग प्रकार का अधिकार होता है। अभी जो सभी लोगों को आप जाकर बोलेंगे भैया हरे कृष्ण जप कीजिए तो वे लोग सहजता से जप नहीं करेंगे। उनकी वो किसी पंथ में फंसे हुए रहते हैं, कोई इसका भक्त होता है, कोई किसी बाबा का भक्त होता है, कोई किसी देवी का भक्त होता है। तो हर एक का अपना अपना अधिकार होता है समझने का, तो सहजता से लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे उन लोग भक्तों की संगति में आएंगे, थोड़ा हर एक थोड़ा कथा सुनेंगे, धीरे 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 उन लोग को समझ में आएगा अरे ब्रह्मा जी ने कहा है क्या ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण करणम, और भी शास्त्रों से कई सारे बातें सुने एकदम उनकी धीरे धीरे करके उनकी श्रद्धा बैठेगी। लेकिन इमीजिएटली अगर आप उनको बताएंगे उनका अधिकार नहीं होगा। तो हरेक के अधिकार के हिसाब से अगर शास्त्र में कुछ नहीं है उनको एंगेज करने के लिए तो नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए वेद व्यास जी ने धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए, इसके लिए भी महाभारत या वेदों में बहुत सारी चीजें लिख दी है कि जिसको इसमें श्रद्धा है वो ये करे, जिसको जिसको इस देवता की पूजा करनी है वो इस देवता की पूजा करे, जिसको काली की पूजा करनी है काली की करे, शिव जी की पूजा करे शिव जी करे, गणेश जी की पूजा करे गणेश जी करे। और उन्होंने ये भी बता दी कि हाँ जिसको भगवान की भक्ति करनी है भगवान की भक्ति करे। तो ऐसे उन्होंने सम कर दिया, लेवल कर दिया। वास्तविक जो चीज है कि भगवान की भक्ति करने से ही जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रज, ये जो भगवान श्री कृष्ण कहे और कोई नहीं कहा है। तो ये जो बात है स्पेसिफिकली वेदव्यास जी को बतानी चाहिए थी लेकिन वो उन्होंने नहीं की। उस कारण से वेदव्यास जी असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने भक्ति का प्रचार ठीक से नहीं किया था। किम भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिया परम हंसा नाम तक एव अच्युत प्रिया, अवश्य ही मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। और लेकिन ये जो धर्म है भगवत भक्ति का धर्म, भागवत धर्म है, यही परम हंसों को प्रिय है और यही भगवान को भी प्रिय है। और मैंने वही नहीं किया। जब इस तरह से खिन्न अवस्था में बैठे हुए थे तो वहां पर साक्षात नारद जी प्रकट हुए। देखिए ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी आप देखेंगे कि ध्रुव महाराज एक छोटे से बालक थे, 5 साल के, और उनको उनके पिता के गोद में बैठना था, उनको बैठने नहीं मिला। उनकी सौतेली माँ ने उनको घर से निकाल उनको घर निकाल दिया, कहा कि जा भगवान नारायण को प्राप्त कर और उनको बोल कि तुझे मेरे कोख से जन्म दे तब तुझे अधिकार प्राप्त होगा कि तू अपने पिता के गोद में बैठ सके। वे अपनी माता के पास जाते हैं, माता से कहते हैं कि माँ मेरी सौतेली माँ ने ऐसा ऐसा कहा। तो कहा कि ठीक कहा बेटा, उन्होंने बात गलत नहीं की है, ठीक कहने का ढंग थोड़ा अलग था, छोटे बच्चे से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बात गलत नहीं गई है, जा बेटा भगवान नारायण को प्राप्त कर। तो ध्रुव महाराज ने निर्णय किया कि मुझे ऐसा पद चाहिए जो ना मेरे पिता के पास है, ना मेरे पिता के पास है, ना परम पिता ब्रह्मा के पास भी ऐसा पद नहीं है, ऐसा पद मुझे चाहिए। और ये दृढ़ता के साथ निकल पड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए। बस माँ ने बोल दी जाओ, भगवान कहाँ है माँ, भगवान का भगवान वन में है, वन में तुझे मिल जाएंगे। तो वे निकल गए, छोटा सा 5 साल का बालक। क्या हम लोगों में किसी की हिम्मत है कि अपने 5 साल के बालक को छोड़ दे भगवान को प्राप्त करने के लिए? ध्रुव की माँ में हिम्मत थी, उन्होंने छोड़ जा बेटा मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है कि वो तुझे निश्चित मिलेंगे, उन्होंने छोड़ दिया। तो ध्रुव संकल्प के साथ जा रहे थे कि मुझे प्राप्त करना है भगवान। तो ऐसी जब स्थिति हमारी हो जाती है कि हम लोग निर्णय कर लेते कि मुझे कृष्ण को इसी जन्म में पाना है, तब क्या होता है? तब हमारे जीवन में भक्तों की संगति आती है। तो भगवान व्यवस्था करते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं? कि हम लोग भक्तों की संगति में रहें। जब हृदय में जिज्ञासा हो, जब कृष्ण को प्राप्त करने की, भगवान को जानने की इच्छा हो जाती हृदय में, तब कृष्ण व्यवस्था करते हैं। कृष्ण को कैसे पता चलता है? भाई हम सबके हृदय में बैठे हुए रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब ये जो मेरे प्रभु है, ये कब संसार को छोड़ के, माया को छोड़ के मेरे पास आएंगे, वेट करते रहते हैं। और जब वो किसी कारण से अज्ञात सुकृतिवश, किसी साधु की कृपा की वजह से यदि वो इच्छा जागृत होती है, तो मुझे भगवान के बारे में जानना कि भगवान कौन है, जब ऐसी इच्छा जागृत हो जाती है, तब कृष्ण जो हृदय में है, परमात्मा के रूप में हृदय में है, वो व्यवस्था करते हैं जीव के लिए, भक्तों की संगति भेज देते हैं, और फिर वो भक्तों की संगति में कृष्ण को समझता है। तो जैसे ध्रुव निकल गया था भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने उनको अपना संग दिया। यहाँ पर वेद व्यास जी भी खिन्न अवस्था बैठे हुए हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि वेद व्यास जी तो भगवान के शक्तिवेश होता है,
पहले अच्छा होता था कि भगवान भगवत गीता बोलते थे तो वायुदेव कार्य करते थे कि सबके कारण तक पहुंच जाए, ये अच्छा होता था।
अब प्रश्न उठ सकता है कि वेदव्यास जी कोई साधारण तो है नहीं, भगवान के शक्तिवेश अवतार है। भाई शास्त्रों की रचना करने के लिए इनका प्रकट हुआ है और यही असंतुष्ट है अपने ही कार्य से। अब बताओ क्यों? प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में भगवत भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में स्पष्ट करके स्पष्टीकरण किया ही नहीं है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण का दास है और इसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने किसी भी कार्य में लिखा नहीं है। इतने हजारों लाखों श्लोक लिख दिए लेकिन ये चीज को स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए ये व्यर्थ है। अब नारद जी को आया देख, जब ऐसे महान साधु के दर्शन होते हैं ना, तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। और यदि उनकी वैसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावतेव सद्भिर् किंतु प्रभोर्य प्रियेव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द। शास्त्रों का मत है कि ये साक्षात हरि है, साक्षात हरि तेरे समस्त शास्त्र है, उक्त सता भावदेव सद्देव, ऐसा भाव है। लेकिन एक और चीज जाननी चाहिए, किंतु प्रभो ये प्रिय वतसि, ये भगवान के प्रिय है, सबसे निकटतम है, भगवान के परिकर है। तो ऐसे जब महान साधुओं का दर्शन हो जाए तो सबसे पहला कार्य तो करना कि उठ के खड़ा होना चाहिए। यदि उठ के खड़े नहीं होंगे तो जैसे बलराम जी ने जैसे रोमहर्षण सिंह का गला काट दिया ना, वैसी स्थिति हो जाएगी। हम अपने हम अगर ऐसे महान साधुओं के दर्शन करें हम खड़े नहीं हो सकते, तो हमारा ये शरीर मृत्यु के समान है, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, हमारे आयु नष्ट हो जाएगा। तो नारद जी को देखते ही वेदव्यास जी खड़े हुए और उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की। कैसे विधिवत, मतलब जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही विधिवत उन्होंने नारद जी की पूजा की और नारद जी से कहा। नारद जी ने अच्छे से उनको पूजा स्वीकार की और सुखपूर्वक बैठ गए और मुस्कुरा रहे थे। अब नारद जी मुस्कुरा क्यों रहे थे? नारद जी की वीणा थी, अच्छे से उनकी वीणा थी, वीणा को बजाते हुए भगवान का नाम लेते हुए नारद जी मुस्कुरा रहे थे। तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि नारद जी इसलिए मुस्कुरा रहे थे, उनको वेदव्यास जी की स्थिति, हृदय की स्थिति का पता चल गया था, पता था उनको कि ये इतना सब पराक्रम करने के बावजूद भी हमारे प्यारे वेदव्यास जी जो है वो असंतुष्ट है, खिन्न है। अभी जैसे कोई व्यक्ति होता है जो खूब खूब पढ़ लेता है, डिप्लोमा डिग्री मास्टर्स पीएचडी डिलीट कर लेता है, इतना सब करने के बावजूद भी वो असंतुष्ट रहता है। उसको मान लीजिए सब कुछ सारा धन है उसके पास है, लेकिन उसको जो इच्छित वस्तु चाहिए वो उसको अगर नहीं मिलती तो दुखी रहता है। तो वेदव्यास जी उनका यह उद्देश्य था कि वो लोगों के कल्याण करने के लिए, लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए ये उन्होंने वैदिक शास्त्र लिखे थे, लेकिन वेदव्यास जी खुद ही संतुष्ट नहीं है तो उसके पढ़ने वाले लोग कैसे संतुष्ट होंगे? इस सारे जो वैदिक शास्त्र के संकलन करता खुद ही असंतुष्ट बैठे हुए हैं, और कैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसको पढ़ने वाले लोगों को खुशी मिलेगी या सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता। वेद नारद जी कहते हैं कि हे महाभाव व्यास जी, आपका शरीर और आपका मन सब ठीक है ना? आपने इतना बड़ा जो पराक्रम कर दिया है महाभारत की रचना करके, वो बड़ा अद्भुत है, टांट मार रहे तो स्तुति नहीं करी की जा रही है, बाद में थप्पड़ मारना है, इसमें थोड़ा सा भी थोड़ा टांट मार रहे कि वेदव्यास जी आपने महाभारत की रचना करके तो बड़ा अद्भुत पराक्रम कर दिया, आपने शास्त्रों वेदों का जो सार है वो आपने महाभारत में दे दिया कथा के माध्यम से, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, बड़ा अद्भुत कार्य है वेदव्यास जी आपका, अवश्य ही आपकी जो जिज्ञासा है वो सब पूरी हो गई होगी, उसने कि इतना बड़ा 100,000 श्लोकों का जो महाभारत है उसकी रचना कर दी, तो निश्चित रूप से आपका जो हृदय में आप संतुष्ट होंगे। तो वेदव्यास जी कहते हैं प्रभु क्यों मजाक कर रहे हैं? आपका ज्ञान अगाध है नारद जी, आप कोई साधारण नहीं है, आपकी महिमा को मैं जानता नहीं हूं, जितने सारे संसार महाभागवत बने हैं सब आपके डिसाइपल है, ध्रुव प्रहलाद जिसका जिसका नाम लीजिए सब इन्हीं के चेले हैं। आपको एक गुड़ रहस्य की बात बताऊं, कालिया भी इन्हीं का चेला है। अब बोलेंगे कैसे? जी हाँ, जीव गोस्वामी लिखे हैं इसको संदर्भ में। कालिया रमना द्वीप में रहता था और गरुड़ जी को श्राप मिला था वृंदावन में कि वो वृंदावन में नहीं आ सकते, तो कालिया को कैसे पता चला कि ये पूरे संसार में केवल वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहां पे गरुड़ जी नहीं आ सकते? नारद जी वहां पर घुमा करते थे सब जगह पर, नारद जी की दृष्टि अचूक थी, वो भविष्य में देख लेते थे कौन मैच द फॉलोइंग करते थे, कौन कहाँ पर फिट होना चाहिए, कौन कहाँ पर भगवान का परिकर बनेगा, वो सब दृष्टि से देख लेते थे। तो कालिया को देख लिए थे वहां पर समझ रमणक द्वीप में, तो जाते थे वहां पर हमेशा, और कालिया को उपदेश देते देते बोल दिए थे कि गरुड़ जी से कभी भय हो तो वृंदावन चले जाना, मेरी कृपा से तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए कालिया तक के गुरु हमारे नारद जी हैं। ध्रुव प्रहलाद के बारे में हम सभी जानते ही हैं। व्यास जी कहते हैं कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है सब ठीक कहा है। नारद जी आप समझ गए हैं मेरी बात को कि मेरा हृदय असंतुष्ट है, इतना सारा कार्य करने के बावजूद भी मैं असंतुष्ट हूँ, आप जान गए और एकदम सत्य बात है। नारद जी आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्योंकि आप भगवान के भक्ति करते हैं, उन भगवान की भक्ति करते हैं जो इस संसार के प्रलय उत्पत्ति और स्थिति का सबके कारण है, और उनकी भक्ति करते करते आप में भगवतीय गुण आ गए हैं। भगवान में जितने प्रकार की जितनी शक्तियां होती है, सर्वव्यापी सर्वदर्शी होते भगवान, सब उनसे कुछ छुपता नहीं है। तो नारद जी कहते वेदव्यास जी कहते नारद जी आप भी भगवान के जैसे ही सर्वदर्शी है। जिस तरह से सूर्य तीनों लोगों में भ्रमण करते रहता है, उसी तरह से आप भी तीनों लोगों में घूमते रहते हैं और अंदर बाहर सब कुछ आप जानते हैं। जिस तरह से भगवान हरेक के हृदय में कौन सा संकल्प कब कब उठता है भगवान जानते हैं, हम नहीं जान सकते। हाँ, यदि हमें पूछा जाए कि आज से एक साल पहले इसी समय हम मन में क्या विचार कर रहे हैं, चलो मन में छोड़िए, आप क्या खा आज से एक साल पहले आपने क्या खाया था इस आज के दिन, कोई बताएगा? चलिए एक महीने पहले आज के दिन आप क्या कर रहे थे, बहुत डिफिकल्ट। तो नारद जी भगवान जैसे भगवान जानते हैं, भगवान हरेक जीव के हृदय में कब कब संकल्प कब कब उठा है, डेट टाइम सेकंड मिली सेकंड के साथ भगवान जानते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। भगवान जानते हैं कि मेरे इस भक्त के हृदय में ऐसे संकल्प उठा था, उसको उसकी इच्छा थी कि भैया करोड़पति बन जाए, कोई बात नहीं, उसको सूरत में जन्म दे देते हैं, किसी डायमंड व्यापारी घर में जन्म ले लेगा तो वो बेचारा करोड़पति बन जाएगा। तो इस तरह से भगवान हरेक के हृदय का संकल्प जानते हैं। तो वेदव्यास जी कहते कि नारद जी आप भी भगवान जैसे ही है, क्यों कैसे ऐसे बन गए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के कारण वो भगवान के जो भगवत गुण है वो आप में आ गए है, और वो जो सर्वदर्शिता है वो भी आप में भी है। आप तीनों लोकों में, आपको तीनों लोकों में घूमने का, वैकुंठ आदि लोकों में घूमने का आपको फ्री वीजा है, उनको वीजा निकालना नहीं पड़ता वैकुंठ जाने के लिए, भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए नारद जी को सब अराउंड है। नारद जी किसी भी लीला में कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरह से वेदव्यास जी ने नारद जी के चरण कमल में समर्पित किया और पूछा कि हे नारद जी मेरे इस असंतुष्टि का कारण बताइए, क्या कारण है मेरे संतुष्टि का। अब नारद जी बोलना चालू करते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम यन्ने वासुन तुष्यन मन्ने तदर्शनम किलम भवतानुदित प्राय यशो भगवतो अमलम। आपने भगवान के यश का गान नहीं किया है। यन्ने वासुन तुष्यन मन्ने तदर्शनम किलम, मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या वह ज्ञान सब अधूरा है। जिस शास्त्र में भगवान के बारे में वर्णन नहीं किया है वो वेस्ट है। जिस शास्त्र में या किसी भी कार्य में भगवान जो भगवान के लिए नहीं किया जाए वो व्यर्थ के समान है। अब वेदव्यास जी जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए, यहां तक कि उन्होंने वेदांत दर्शन लिख दिया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उनमें से उन्होंने भगवान के गुणों को नहीं लिखा। इस कारण से हम नारद जी को डांट रहे हैं। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा वर्णन किया है ना, धर्मार्थ का मोक्ष, वैसा वर्णन आपने भगवत भक्ति के लिए नहीं किया है। जितना आपने जोर धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि पर दिया है, वैसा जोर आपने भक्ति को क्यों नहीं दिया? अरे आप महाभारत की रचना करते हैं, महाभारत में भगवत गीता को लिखते हैं, भगवत गीता का स्थान देते हैं, लेकिन आपने उसमें अर्थशास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, ये चीज, वो चीज सब डाल के रखिए और लोगों को दिया पढ़ो। अब लोग क्या करेंगे? उनको जो अच्छा लगेगा उसको पकड़ेंगे, उसी को मुख्य धर्म मानेंगे। अब किसी की रुचि है कि भैया उसको मांस मछली मटन खाना है, तो वही ढूंढेगा कि भाई मांस खाने वालों को क्या इसमें लिखा गया है। अरे इसमें लिखा गया कि हाँ मांस खा सकते। कैसे खा सकते? हाँ ऐसे ऐसी पद्धति, काली को अर्पण कीजिए, ये मंत्र पढ़िए, काटिए और खाइए। तो लोग उसी को मुख्य धर्म मानेंगे। अरे आपको करना क्या चाहिए था? जीव का स्वरूप है, वो कृष्ण का दास है, वही उसको बताना चाहिए था। न यत वचा चित्र पदम वर हरे यशा जगत पवित्रम प्रगति गर्हिचित तद्वा यसम तीर्थम मुशंति मानसा न यत्र हमसा निर्मत्य शिक्षया। आपने जो ये वैदिक शास्त्र की रचना की है, ये रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, ये जो ये बड़े 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 संस्कृत के विद्वान लोग होते हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना करते हैं, लेकिन भगवान के गुणों को गाने के लिए नहीं। किसी स्त्री के सौंदर्य की रचना वर्णन कर देंगे, किसी अप्सरा के बारे में वर्णन कर देंगे, किसी की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन कर देंगे, एक स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन कर देंगे, बड़े अलंकार आदि से युक्त श्लोक बनाएंगे, लेकिन उसमें भगवान के बारे में कुछ नहीं है। और इससे जगत को पवित्र करने वाले भगवान कृष्ण के यश का गान नहीं करते। उसमें लोग क्या करते हैं, इस तरह से भौतिक चीजों के बारे में लिखते रहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जो मानसरोवर में जो हंस लोग रहते हैं ना, हंस, वे लोग कभी भी ऐसे जो मानसरोवर में, तो यहां पर उत्पादी गई है कि कौवे और हंस, ये दो चीजें बताई गई है।
हरे कृष्णा।
मांस
हरे कृष्णा।
तो ये जो लोग होते हैं, जो कर्मी लोग होते हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको स्त्री क्या, स्त्री पुरुष के संग के बारे में, या मांस मछली मटन के बारे में, या फिर उनको जो सांसारिक जो कथा है उनमें जो रस होता है, ऐसे लोगों को नारद जी कहते हैं कि ये कौओं का भोजन है। कौओं का, इसमें हंस लोग रमन नहीं करते। हंसों को क्या चाहिए? प्राकृत वातावरण चाहिए। हंसों को क्या चाहिए? वो मानसरोवर में उनको प्राकृत वातावरण दिखता है, उनको कमल के फूल दिखते हैं, उसमें भौरे मंडराते रहते हैं, ऐसे जगहों पर, सुंदर सुंदर प्रकृति की जगहों पर हंस मिलते हैं। हंस कभी आपको कचरे के डब्बे के पास नहीं मिलेंगे। कचरे के डब्बे के पास कौन मिलेंगे आपको? कौवे मिलेंगे, हंस लोग कभी नहीं मिलेंगे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वे कभी भी ऐसे स्थानों पर नहीं जाते जहां पर, या फिर ऐसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, या फिर ऐसे वस्तु को स्पर्श भी नहीं करते जहां पर भगवान की लीला कथाओं का कोई मतलब नहीं है। कौवे और हंस ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं। जो कौओं का क्या रहता है, उनको बहुत प्रकार कौवे का अर्थ है कि सांसारिक जो कर्मी लोग हैं उनकी तुलना कौओं से की जाती है। तो वे लोग एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तेरा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, आज क्या किया तूने, उसका क्या चल रहा है, उसकी शादी क्या हुआ, उसका क्या हुआ, और कितना शेयर मार्केट में इतना लगाया आज, मार्केट कितना डाउन है, कितना अप है, यही सब चर्चा चलते रहते हैं। कोई भगवान के बारे में चर्चा नहीं। अरे तेरे घर में क्या हुआ आज, तेरी बहू ने क्या किया अरे मेरी सास तो ऐसी ही है यार, पता नहीं ये सास भूखों क्या शाप लगे, ये सब इस तरह से स्त्रियां एकत्रित होती और यही सब चर्चा करके देती है। तो ये जो ऐसा नारद जी बता दें कि ये जो इस प्रकार की जो चर्चा है, एक कौ इनको कौओं की कैटेगरी में गिना जाता है कि कौआ लोग इसको पसंद करते हैं। हंसों को ऐसे स्थान प्रिय नहीं है, हंसों को ऐसे स्थान प्रिय है, हंस मतलब भगवान के भक्तों को, जहां पर भगवान के गुणों का, गुरु की कथा चलती हो, कीर्तन होता हो, भगवान के दर्शन जहां पर हो, ऐसे स्थानों में जाना भक्त पसंद करते हैं। इस प्रकार संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्य है, लोगों को लिखना होता है तो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, आज इतने सारे संसार के मैगजीन्स है कि मोटर कार पर मैगजीन है, टीवी पर मैगजीन है, इंटरनेट पर मैगजीन है, इस पर मैगजीन है, उस पर मैगजीन है, अलग अलग प्रकार के मैगजीन, लेकिन लोगों को आकर्षित करने के लिए। और इतने सारे संसार में बस आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे तो आप बाजू में एड्स आएंगे आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए कि यहाँ पर इस प्रकार की इंद्रतृप्ति है। आप गलती से, आजकल तो ऐसा होगा कि आपको अगर कैमरा खरीदना, आप गूगल में सर्च कीजिए कैमरा खरीदना है, कैमरा का नाम डाल दीजिए। अब हम साल भर जो कैमरा आपने डाला है उसके साल भर फोटो आएंगे आपके, जहां जहां आप इंटरनेट पर जाएंगे आपके उसके फोटो आते रहेंगे कि आपको ये कैमरा खरीदना है, आपको ये कैमरा खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, जबरदस्ती। तो एक एक चीज की बात की जा रही है, लेकिन सांसारिक वस्तु कोई चीज करनी है, इसी तरह से ये जाल है संसार का। यहाँ पर भगवान भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, लेकिन किस तरह से आप पूरी तरह से संसार के इंद्रियों के विषयों में किस तरह से लुप्त हो जाए, इसी में सारा जो फील्डिंग लगाई गई है। क्रिकेट में कैसे हम लोग एक बैट्समैन को आउट करने के लिए फील्डिंग लगाई जाती है ना, उसी तरह से ये माया इन लोगों के माध्यम से हम लोगों को आउट करने के लिए फील्डिंग लगा दी है। अभी हम लोगों को निर्णय करना है क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है या इस माया द्वारा रचाई हुई फील्डिंग में रहना है। तो अधिकांश जो संसार में साहित्य है वो केवल स्त्री पुरुष के संपर्क के बारे में या सांसारिक चीजों के बारे में ही होते हैं, और वास्तविक जो भगवत तत्व के ज्ञान के विषय में है वे उसका प्रचार बहुत कम होता है। भक्तों की कितना प्रयास करना पड़ता है भगवदगीता बांटने के लिए, लेकिन यही भगवदगीता के बदले अगर कोई आप शाहरुख खान का फोटो छाप कर कोई अगर मैगजीन बांटता होगा तो उसको तुरंत खरीद लेते हैं लोग, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की गरज नहीं, वो दिखा देते हैं, कांच खोल देते हैं गाड़ी में। किताब बांटने वालों को अनुभूति होती है कि एक ही एरिया में, एक ही जगह पे भक्ति किताब बांटते हैं, और जो मैगजीन वाले हैं टाइम्स मैगजीन वो भी किताब बांटते रहते हैं। तो वो कांच खोल, हम लोग को जबरदस्ती खोलना पड़ता है कांच को, भाई खोलो, और फिर उसके हाथ में टिका देते हैं, भाई ले तू, और हाथ में आ जाती है तो हम लोग बेचारा ले भाई 100 रुपया ले ले। लेकिन ये यही स्थिति उन लोग की नहीं होती जो स्त्री पुरुष के प्रेम की चर्चा या पिक्चरों के गॉसिप की चर्चा हो, किसी सुंदर हीरोइन का फोटो आप उनके मैगजीन में छाप दीजिए तो कांच उतर उतर कर लोग लेते हैं, स्त्रियों को वो बतानी नहीं पड़ती, अपने आप बुला बुला कर ले लेंगे। तो ये स्थिति है संसार की कि ऐसे विषय नारद जी कहते हैं कि ये सब शोम का अलंकार है। जिस तरह से एक मरा हुआ व्यक्ति उस पर अलंकार किया है, दूसरे शरीर, ये सब शरीर के संबंध, हम शरीर को मैं मानने वाले लोगों की स्थिति है कि वे लोग सांसारिक विषयों को भोगना चाहते हैं, इसलिए ये माया की व्यवस्था है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंस है वे कभी भी ऐसे विषयों में नहीं जाते। तो नारद जी कहते हैं तद्वा विसर्गो जनता का विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोक अभक्तवती अपि नामानि अनंतस्य यशा अंकितानि यत श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। इसके विपरीत संसार में ऐसे साहित्य है जो संस्कृत के बड़े बड़े व्याकरण से अच्छी तरह से बनाए गए हैं, लेकिन उसमें भगवान का कोई गुण नहीं है। लेकिन उसके विपरीत कोई ऐसे साहित्य है जिसकी रचना संस्कृत के विद्वत, संस्कृत की विद्वत्ता या व्याकरण के तोल मोल से भले नहीं की हो, लेकिन यदि उसमें भगवान के गुण हो, इसमें भगवान के गुण रूप लीला आदि का वर्णन किया हो, तो ऐसे साहित्य का अध्ययन करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। और सत्पुरुष जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे ही वस्तु का अध्ययन करना चाहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस संसार में रहते हुए भी बुद्धिमानी से भक्तों की संगति में रहे, भगवान की कथाओं को सुने, भागवत को पढ़े, भागवत का अध्ययन करे, भगवान का जप करे, और इस तरह से भक्तों की संगति में रहते 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 कथा श्रवण करते करते शरीर छोड़ के भगवान के धाम चले जाए, ये बुद्धिमानी है। श्री प्रभुपाद जी इसको एक उदाहरण देते हैं कि ये जो कार्य भक्तों को करना है, कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करने वाले व्यक्ति चाहिए। कैसा होना चाहिए? विष का कुंड लेकिन उसमें से कोई अमृत निकाल ले, या गंदगी में से भी गंदगी में पड़ा हुआ सोना स्वीकार कर ले, अज्ञात कुंड में यदि कोई उत्तम स्त्री हो तो उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करे, या अच्युत कुंड में भी, अच्युत मतलब सबसे निम्न श्रेणी के कुंड में भी यदि कोई शिक्षक हो जो योग्य शिक्षा दे सकता है तो उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी लोगों के लिए ये कंपलसरी है कि इस तरह से हमें भक्तों को ऐसा ही होना चाहिए। इस संसार में सार क्या है, संसार का उसको जानकर सार यही है कि हम लोग कृष्ण के दास हैं और हमें भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों के अलावा इस संसार में और कहीं सुख नहीं है। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो कर लीजिए, बाहर के लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं कि वो देख ही रहे हैं कुछ सुखी है नहीं। वास्तव में सुख यदि है तो भगवान के कथा श्रवण में सुख है। जितनी शांति भगवान के कथा को सुनने के लिए या भागवत पढ़ने में आती है उतनी शांति आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में नहीं मिलेगी। आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलिए उसमें क्या है, ये मर गया, आज वो मरे, आज इतने मरे, आज उतने मरे, आज उतने मरे, सबके मरने की खबर है। भागवत में श्रेष्ठ भक्तों का चरित्र रखा गया है, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ऐसे भक्तों के चरित्र को बारंबार 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 सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे तो ऐसे भक्तों के जो गुण है वो हम लोग हमारे अंदर आ जाएंगे और हम लोग भी उनके जैसे हो जाएंगे। भागवत के संपर्क में रहेंगे तो हम लोग भी भागवत बनेंगे, न्यूज़पेपर के संपर्क में रहेंगे तो कचरा बनेंगे। इसलिए सार यही है कि संसार में रहते हुए भी भक्तों की संगति में रहते हुए भागवत को पढ़ना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ये जो इतना बड़ा विस्तार प्रभुपाद जी ने किया है, हर एक श्लोक को प्रभुपाद जी ने अनुवाद लिखा, तात्पर्य लिखा है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं नम्रता से कि मेरे इस कार्य में त्रुटि रह गई होगी, मैंने अनुवाद किया है इंग्लिश में इसका, तो इसमें निश्चित त्रुटि रह गई होगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये नारद जी का कार्य है, और मुझे विश्वास है कि नारद जी ने बताया उपदेश है, निश्चित रूप से इसको सारा संसार स्वीकार करेगा। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने 11 साल में संपूर्ण विश्व भर प्रचार किया, और प्रचार करने में इतना व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने रोज एक समय निकाल लेते रात को 1 से 4 बजे के बीच में, उस समय में प्रभुपाद जी अनुवाद करते थे भागवत का। प्रभुपाद जी भागवत को संस्कृत से इंग्लिश में आचार्य को टीकाओं के साथ प्रस्तुत करने के लिए मेहनत करते थे रात को। अरे क्या उस व्यक्ति को गरज थी उतना करने की, क्या गरज थी उनको पढ़ने की, अपना प्रचार कर देते, भागवत वैसी भागवत है वैसी, लेकिन उनको उनको जिस तरह से वेद व्यास जी विचार कर रहे थे गंभीरता से कि कैसे बद्ध जीवों का उद्धार होगा, उसी तरह से प्रभुपाद जी भी विचार कर रहे थे, दया एक दया उनके हृदय में थी, और उस दया के कारण उस 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने इतना कष्ट सहन किया कि हम लोगों को इस माया से तारने के लिए ना कि सिर्फ संसार में घूमे प्रचार किया, बल्कि वैदिक शास्त्रों को विशेषकर श्रीमद् भागवत को उन्होंने हम सबको दिया। इस श्रीमद् भागवत को गंभीरता से लेना चाहिए, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, उसका अध्ययन करना एक नित्य होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, एक नित्य प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हफ्ते में एक बार आ गए या कोई आ गया तो कथा सुन ले, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन भर में थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए भागवत को सुनने में और भागवत को पढ़ने में, अध्ययन में विशेषकर संबंधित समय निकालना चाहिए। जिस तरह से हम लोग ये भोजन करते हैं ना, उस तरह से भागवत आत्मा का भोजन है। एक बार भागवत के संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे करके जो संसार के प्रति जो आसक्ति है ना सब हट जाएगी, हृदय में जो इस संसार को भोगने की तृष्णा है ना वो कम हो, खत्म हो जाएगी और कृष्ण को पाने की लालसा बढ़ जाएगी। लेकिन भागवत को सुनने से या पढ़ने से उसमें भक्तों ने उसमें क्या है, भक्तों ने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया है ये बारंबार पढ़ेंगे तो एक लालसा हमारे हृदय में हो जाएगी, अरे इन लोगों ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, मैं भी कब भगवान को प्राप्त करूंगा, ये लालसा आनी चाहिए हृदय में। जब भी भगवान को प्रणाम करें तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति चाहिए, ऐसा नहीं बस आए प्रणाम के चले गए। अरे अगर भगवान के प्रेम नहीं मांगेंगे तो हम लोग अन्य वस्तुएं मांगते कि अन्य वस्तुएं भी मांगिए, लेकिन एक मुख्य प्रयोजन मुख्य चीज ये होनी चाहिए कि भगवान मुझे आपके चरण कमलों में प्रेम चाहिए, बस हो गया संसार से मैं उब गया, मैंने देख लिया स्त्री स्त्री पुत्र आदि में सारे संसार को देख लिया मैंने, पर इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, वास्तव में सुख प्रभु है तो आपके चरण कमलों में है, इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति बनाइए, प्रेम भक्ति दीजिए, ये शरीर छूटने के बाद मुझे आपका पार्षद तो पार्षद बनना है, ये प्रार्थना करेंगे भगवान से, क्योंकि यही प्रार्थना भागवत में अन्य बहुत सारे भक्तों ने की है, कृष्ण मुझे आपके चरण कमलों में प्रेम चाहिए, यही प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए, यही भागवत का सार है, यही करने कहा गया, इसलिए तो भागवत रचा गया है ताकि भागवत में जो भक्तों के चरित्र रखे गए उनको देखकर हम लोग भी उनका अनुसरण कर सके, उनको फॉलो कर सके और उनके जैसे बन सके। तो नारद जी कहते हैं नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जित न शोभते ज्ञानमलम विरजनम उतः पुनः शाश्वत अभद्रमेश्वरे न चार्पितम कर्म यदन्य कारणम। आत्मसाक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत भाव से वर्जित है। भार यदि आज संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें प्रचार करते हैं लेकिन यदि उन प्रचार का एकमात्र सार ये नहीं है कि अच्युत भाव मतलब भगवान की भक्ति करना यदि उनका कंक्लूजन नहीं है तो सब व्यर्थ है, उनसे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारद जी यहाँ पर भगवान की महिमा के व्यतिरिक्त और सभी चीजों का खंडन कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जो ब्रह्म के जो उपासक है निर्विशेष ब्रह्म के उपासक है उनकी उनकी तुलना भक्तों से नहीं कह सकते। हे व्यास जी आप जरा समझ लीजिए इस बात को, सिद्धांत को समझ लीजिए, आपने क्या किया भगवान की भक्ति को छोड़ा है ना आपने, और क्या किस चीज का वर्णन किया आपने, अब निर्विशेष ब्रह्म के उपासकों के लिए आपने दिया है उनकी उनकी तो कोई स्थिति ऐसी कि लोग भगवान के स्वरूप को छोड़कर पता निराकार ब्रह्म के पीछे पड़े रहते हैं, अरे ऐसे लोगों को आपने अपने शास्त्रों में जगा दिया है, इनकी तो मैं इनको तिरस्कार करता हूँ ऐसे लोगों का। फिर वो कहते हैं कि जो वैदिक साहित्य है यदि वैदिक साहित्य लेकिन उसमें भगवान का वर्णन नहीं है मैं ऐसे भी चीज़ों का खंडन करता हूँ। तो जब वैदिक साहित्य खंडन कर दिया है और जब उन्होंने वेद व्यास जी ने निर्विशेष ब्रह्म के उपासना का खंडन कर दिया है तब जो सामान्य लोगों के लिए जो इंद्रिय सुख इंद्रिय विषयों में जो सुख है उनके बारे में जब वर्णन किया है वेद व्यास जी आपने इसका तो मैं खंडन ही खंडन करता हूँ। तो इस तरह से आपने जितने भी रचनाएं की है वो सब व्यर्थ की गई है, आपको करना चाहिए था सीधा भगवान के गुण रूप लीला आदि का वर्णन, आपको करना चाहिए था सीधा भागवत लिखना चाहिए था सीधा आपने, लेकिन आपने ऐसा सब नहीं किया। तो यहाँ पर नारद जी इनको दाड़ दाड़ कर नारद जी वेदव्यास जी को ठीक कर देते हैं, उनकी मति को ठीक करते हैं। अब कल नारद जी अपना पूर्व अपना जीवन चरित्र सुनाएंगे, वेदव्यास जी को अपने भक्ति का महात्म्य बताने के लिए उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ ये वेदव्यास जी उनको कल बताएंगे, अपने जीवन का अपना पूर्व चरित्र बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।